मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 18 मई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे युवा साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं छोटू प्रसाद यादव, आपका गांव है बरतार, जिला है गया बिहार, नीतिका आप न्यू दिल्ली से हैं, रामेश्वर मौर्य आप संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश से हैं, विवेक कुमार आप रसूलपुर कोलवार उत्तर प्रदेश से हैं, सोनी गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से हैं और तनवीर आलम आप पचांबा गांव जिला नवादा बिहार से हैं। तो छोटू, नीतिका, रामेश्वर, विवेक, सोनी और तनवीर आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हमेशा की तरह मैं आज आपको कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा और सूचना ये है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं दिया जाता है, नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कल यानी शनिवार को आपको जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं अखबारों में छपे हुए, वो उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल भी आपको दिया जाता है क्योंकि आपके पास शनिवार है और फिर पूरा रविवार भी है ताकि आप अपनी छुट्टियों का अच्छी तरह से भरपूर उपयोग सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए कर सकें। फ्रेंड्स, इसके तहत हम लोग योजना के 2 लेख आपको प्रोवाइड करते हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी 2 लेख होते हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। इसके साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन होता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। ये इसलिए दिया जाता है कि आपको पता लग सके कि ज्यादातर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका संबंध करेंट अफेयर्स से होता है ज्यादातर। उसका पर्पस 2 होते हैं, एक तो आपको ये पता लग सके कि करंट अफेयर्स से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं ताकि आप करंट अफेयर्स को उसी एंगल से तैयार कर सकें। देखिए, घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने घटनाओं को याद कर लिया, घटनाओं को जान लिया, उसके कलर को जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षा की दृष्टि से आपको इस घटना को किस तरीके से जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस लिहाज से, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकें इस दृष्टि से भी वीकली क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाता है और फिर हमारे जो क्लास स्टूडेंट होते हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। दोस्तों, यहां मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरे पास लगातार इस बारे में मेल भी आते हैं और वो ये कि सर, ये जो योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स हैं, क्या इन्हें पढ़ना जरूरी है? पहला ये प्रश्न होता है और दूसरा, क्या इसी से काम चल जाएगा? मैं आपको 2 बातें इसमें कहना चाहूंगा। पहली बात तो मित्रों की, जो चीजें आपको दी जाती हैं पढ़ने के लिए, राइट, एज ए होल, संपूर्णता के रूप में इसीलिए दी जाती हैं कि ये आपके लिए उपयोगी है। मैं इस पर कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं कि इन्हें पढ़ना जरूरी है या नहीं है। ये मैं कह सकता हूं कि गैर जरूरी कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती है, न तो पढ़ने के लिए और न सुनने के लिए, कोशिश यही होती है, राइट। अब आपके लिए पढ़ना जरूरी है या नहीं है, ये निर्णय आपको लेना है। आप कह सकते हैं कि हम कैसे निर्णय ले सकते हैं? जी हाँ, आप इस रूप में निर्णय ले सकते हैं कि जो आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, देखिए कि आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। आर्टिकल प्रोवाइड करने का मकसद इतना जरूर है कि इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और अगर आप जानते हैं तो आप इसे न पढ़ें और अगर नहीं जानते हैं तो बट नेचुरल है कि आपको इसे पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं इस बात का जवाब देने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहा हूं कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, यह बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, आपको अपने ही पृष्ठभूमि के रूप में इसे देखना पड़ेगा। दूसरी बात मित्रों की ये कहा जाता है कि पूछा जाता है और ये जायज भी है, क्योंकि आप योजना पत्रिका में देखेंगे तो कई आर्टिकल्स होते हैं, कुरुक्षेत्र में भी कई आर्टिकल्स होते हैं और उनमें से हम लोग चार चार आर्टिकल, चार सप्ताह में चार आर्टिकल्स प्रोवाइड कर पाते हैं, मंथली मैगजीन है। इस बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि उस महीने भर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें से चार जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स परीक्षा की दृष्टि से मुझे जान पड़ते हैं वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूं, जो मुझे जान पड़ते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि सफिशियंट है, क्योंकि एक ही टॉपिक पर आप देखेंगे कि दो दो तीन तीन आर्टिकल भी होते हैं उसी महीने के मैगजीन में। तो यह भी अब आपके ऊपर है, यदि आप समझते हैं कि ठीक है ये चार पर्याप्त हैं, बाकी कोई बहुत जरूरी आर्टिकल नहीं है, तो आप इन चार को भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास वक्त है, आपके पास मैगजीन है, तो उसमें जो छूट रहे हैं वो कोई बेकार चीज नहीं है, बेकार चीज नहीं है। हो सकता है कि ये जो आपने पढ़े हैं उन्हीं का रिविजन आपको हो जाए, इन्हीं के बारे में हो सकता है कि एक दो कुछ और भी फैक्ट्स मिल जाए, लेकिन वो तब जब आपके पास वक्त हो, आपको लगता है कि ठीक है चलो चलते फिरते इन पर भी एक नजर मार लेते हैं, तो इस तरीके से आप मैगजीन के शेष आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी पूरी तरह से आपकी अपनी च्वाइस पर निर्भर करता है, राइट फ्रेंड्स। अब आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग सिविल सेवा परीक्षा के तरीके पर कुछ बात करेंगे और यह इस ये जो पूरी एक सीरीज चल रही है मित्रों, ये इसका इस सीरीज का आखिरी दिन है, सीरीज के तहत ये आखिरी एपिसोड है, कह लीजिए आखिरी लेक्चर है। हाँ, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी या आप लोग ईमेल के जरिए मुझसे कहेंगे तो फिर हम किसी भी इससे संबंधित टॉपिक को लेकर के बात कर सकते हैं, लेकिन सीरीज के तहत ये आज आखिरी है। इसके पहले मैं थोड़ी सी दो न्यूज है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, ये बहुत ही संक्षिप्त में न्यूज है। कर्नाटक में आप देख रहे हैं कि येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई है और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसको लेकर के जो भी आरोप प्रत्यारोप और समीक्षाएं हो रही हैं ये अखबारों में भी आ रही हैं, न्यूज में भी आ रहे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, लेकिन उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से को मना करने से इनकार कर दिया था। ये सारी घटनाएं हैं मित्रों, इस पर आपको नजर रखना है क्योंकि इसमें संवैधानिक मामला है और संविधान तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ही आपके पूरे के पूरे सिलेबस का, तो इस पर मैं कोई भी कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा। जो दूसरी घटना है उस पर आपको नजर रखनी है और नजर ये रखनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कमिंग वीक में रूस जा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से मिलने के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होगी, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होगी, क्योंकि वैसे भी रूस भारत का परंपरागत मित्र रहा है, बहुत बहुत घनिष्ठ मित्र रहा है, लेकिन अब आप जानते हैं कि इक्वेशंस थोड़े से बदल रहे हैं। 1991 में जब रूस का विखंडन हो गया उसके बाद से रूस कमजोर पड़ गया, वैसे भी लिबरलाइजेशन के दौर में फिर पूरी दुनिया एक होने लगी, कैपिटलिस्टिक जो थ्योरी है वो ज्यादा पसरने लगी। ऐसी स्थिति में जब दुनिया एक ध्रुवी ही हो गई तो बात खत्म हो गई और फिर नए नए समीकरण बनने लगे। अभी भारत के संदर्भ में आप अपने दिमाग में केवल एक समीकरण रखें कि इस बीच में हुआ क्या है कि भारत और रूस के संबंध थोड़े से शिथिल पड़े हैं, पहले जितने घनिष्ठ नहीं रह गए, है ना। पहले रूस बहुत निकट था, अमेरिका थोड़ा सा दूर था, अब अमेरिका बहुत निकट आ गया है तो बट नेचुरली कि रूस थोड़ा सा दूर होता चला जा रहा है। और इसके कारण हो ये रहा है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, मतलब एशिया महाद्वीप और ये नीचे वाले हिस्से में, रूस चीन और पाकिस्तान इन तीनों की मित्रता बढ़ रही है। तो भारत के लिए ये एक चिंता का कारण है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की मित्रता और उसमें रूस का शामिल हो जाना, और वो भी उस रूस का जिसके साथ हमारी परंपरागत मित्रता रही है और भारत रूस से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र भी है। तो दोस्तों, इस रूप में जो हमारी प्रधानमंत्री की यात्रा है शक्ति संतुलन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कही जा सकती है, तो इस लिहाज से आप इस यात्रा को देखेंगे और जब भी आपको कुछ पढ़ने और जानने को मिलेगा तो आप उसे नोट भी करते जाएंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। देखिये, मुख्य विषय का अंत अब मैं इस विषय से इस तरह से करूंगा कि आपको कैसे परीक्षा की तैयारी करनी होती है। देखिए, तीन चीजें होती हैं सिविल सर्विस परीक्षा में, इन तीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए और इन तीनों में से कोई भी एक कमजोर पड़ेगा तो आप मान करके चलिए कि आपकी प्रिपरेशन कमजोर हो गई है और वही आपको धोखा दे जाएगी। नंबर वन, थ्योरी। थ्योरी का मतलब है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी विषय हैं इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी का मतलब है कि आप पुस्तक पढ़ेंगे। मजेदार बात यह है कि आप पाएंगे कि इन पुस्तकों से सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पुस्तकें पढ़ेंगे। दोनों बात मैं ही कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं उसे कहलाया जा रहा है, जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो यही बात कहने के लिए मुझे कह रहा है। सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, चाहे आप इकोनॉमिक्स के अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देख लीजिए, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के उठा करके देख लीजिए, थोड़े से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जरूर उसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो किताबों में होते हैं। प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आपको पढ़ना है। आप इस विरोधाभास को देखिएगा। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है फ्रेंड्स, वो करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स इसका ब्लड सर्कुलेशन है, मैं आपको बता चुका हूं, इसकी सांसें हैं, ब्रीदिंग है। जैसे ही आप करंट अफेयर्स से अपने को किनारे करेंगे, आप मान करके चलिए कि आपकी तैयारी की मौत हो गई है, चाहे आपको ये पसंद आए करंट अफेयर ना आए, चाहे आपके घर पर अखबार आ रहा है नहीं आ रहा है, ये इससे यूपीएससी का कोई कंसर्न नहीं है। प्लीज इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से मेल आते हैं कि सर हमारे यहां अखबार नहीं आते हैं, बताएं क्या करें। अब मैं क्या बता दूं कि क्या करें, राइट। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करेंगे वो आप करेंगे, और जो करना है वो ये है कि किसी भी हालत में आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर और न्यूज से अपना संबंध लगातार बनाए रखना ही है। अब आप देखिए कि ये करंट अफेयर क्या है। करंट अफेयर्स बेसिकली इंसिडेंट्स, घटनाएं हैं, घटनाएं घट रही हैं, जो आपने सिद्धांत के रूप में जो सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उन्हीं सिद्धांतों से संबंधित दुनिया भर की घटनाएं रोज घट रही हैं, और पूरी दुनिया में घट रही हैं, ढेर सारी घटनाएं पूरी दुनिया में घट रही हैं, उसकी जानकारी आपको अखबारों से और न्यूज से मिलती है, राइट। घटनाओं के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने कहा ना कि यह बड़ा विरोधाभास जैसी स्थिति। चैलेंजेस को समझिए कि यूपीएससी के चैलेंज क्या है। किताबों से आपको सिद्धांत पढ़ना है लेकिन किताबों से नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर से आपको घटनाएं पढ़नी है, देखनी, उन पर निगाह रखनी है, उससे भी नहीं पूछा जाएगा, तो फिर पूछा क्या जाएगा। मित्रों, जो पूछा जाएगा वो ये, जिसे आप कहते हैं विचार, विचार व्यूज, यानी कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनके पीछे विचार क्या है, व्यूज क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो अब आप इन तीनों के लिए एक अच्छे रूपक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो किताब है आपकी, वो किताब एक तरीके से दूध है, दूध का हंडा है, आपने एक हड़िया में दूध इकट्ठा कर लिया, राइट। इसके बाद उसमें जो घटनाएं हैं, घटनाएं वो मथनी है, दूध को मथने वाला मथनी है। अब पता नहीं बड़े शहर के स्टूडेंट इस रूपक को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना बहुत पुराना रूपक भी नहीं है। तो ये मथनी है, घटनाएं जिससे आपको इस दूध को मथना है। अब जो निष्कर्ष है, जिसको मैं निष्कर्ष कह रहा हूं, जो परीक्षा में पूछा जाएगा, वो मक्खन है, मक्खन है। आपको अपने सिद्धांतों पर जो आपने किताबों से पढ़े हैं, इन घटनाओं को कस कर, या सिद्धांतों को आप कसौटी मान लीजिए, उन कसौटियों पर ये जो करंट अफेयर्स की घटनाएं घटित हो रही हैं, उस कसौटी पर इसको कस कर अपनी तरफ से मक्खन निकालना है। और ये मक्खन जो है, ये आपका उत्तर है, एग्जामिनेशन का उत्तर है। यही सिविल सर्विस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहां आपको रेडीमेड आंसर पढ़ने को नहीं मिलते। ठीक है, 20 में से दो तीन चार पांच क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें रेडीमेड आंसर आपको थोड़े बहुत मिल भी सकते हैं, एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं मिलेंगे, फिर भी थोड़ी सी मदद मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर आंसर तो आपको अपनी तरफ से ही निकालने पड़ेंगे, ठीक वैसे जैसे कि मक्खन। दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज तो आपको फेस करना पड़ेगा ही, इसका कोई उपाय नहीं है। बस मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, जिसका हम लोगों को आत्मसंतोष है, कि हम लोगों की यहां जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं, वो केवल आपको मथना सिखाने की क्लासेस होती हैं, मथना सिखाने की, कि आप कैसे चीजों को पढ़ेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे, और इसके बाद कैसे चीजों के निष्कर्ष निकालेंगे, और तभी मित्रों सच पूछिए तो आप उत्तर लिखने की तकनीक को भी समझ सकते हैं। अदरवाइज कम से कम मुझे तो नहीं लगता है कि बिना इस सब को जाने हुए अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं जो एक सीरीज के रूप में चल रहा था। और अगर कभी आप लोगों को कुछ और विषय की जरूरत पड़े तो आप मुझे ईमेल के जरिए सूचित कीजिएगा, हम लोग फिर आगे इस पर कभी भी बात कर सकते हैं। मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: नीतीश श्रीमाल, यासिन मलिक, मोहम्मद अखलाद, राहुल कुमार न्यू दिल्ली से, कौशिक दा मिदनापुर वेस्ट बंगाल से, और प्रियंका रावत देहरादून उत्तराखंड से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज शुक्रवार है, दो दिनों तक अब आपसे भेंट नहीं हो पाएगी। तो पहली बात तो यह कि इन दो दिनों के लिए मैं आप सबसे अनुमति मांगता हूं, और दूसरी बात यह कि इन दो दिनों के लिए मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। नमस्कार।